उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है और हर रविवार शाम 5:30 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी लेकर उपस्थित होता हूं मैं कमल कुमार प्रजापति। आज आपके बीच फिर हाजिर हूं कार्यक्रम का एक नया अंक लेकर
पूर्वोत्तर डायरी।
श्रोताओं, वसंत का मौसम है और वसंत के इस मौसम में हम नई फूल पत्तियों का स्वागत करते हैं और ये वसंत का मौसम हमारे लिए एक प्रतीक भी है जो हमें ये संदेश देता है कि हम अपने पुराने विचारों और पुराने रूढ़ियों को छोड़कर नया कुछ करें, अपने अंदर जड़ता को खत्म करें और नया कुछ करने की कोशिश करें। और इस वसंत के मौसम का महत्व खास तौर पर भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के लिए इस लिहाज से है क्योंकि पूर्वोत्तर हिस्सा पुष्पों और कृषि का एक प्रधान क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पर खासतौर पर ये मौसम एक नया रंग लेकर आता है। बहुत से महोत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं और नई कृषि का स्वागत होता है, इसीलिए आज हम आपको नागालैंड से खास रिपोर्ट इस कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं जिसमें एक खास तरह के महोत्सव को मनाया जाता है जिसमें जो पुरुष हैं वो इकट्ठे होकर त्योहारों के खत्म होने के मौसम को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इस रिपोर्ट के साथ साथ कुछ और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्सों में भी आपको लिए चलेंगे और वहां से भी कुछ गतिविधियां और कुछ रिपोर्ट्स सुनवाएंगे। जैसे सिक्किम में एक ब्लू ड्यूक महोत्सव शुरू हुआ है और ये महोत्सव सिक्किम की जैव विविधता को दर्शाता है। इसी तरह से हम आपको लिए चलेंगे मिजोरम, जहां पर एक पहल हुई है कि युवा विद्यार्थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उससे हटकर किताबों की ओर भी रुख करें और अपने अंदर रचनात्मकता को बढ़ाएं, तो ये खास रिपोर्ट भी हम आपको सुनवाएंगे। और भी बहुत कुछ आपके साथ बातें करने के लिए इस कार्यक्रम में आज है, तो जुड़े रहिएगा इस पूरे आधे घंटे और इस कार्यक्रम का आनंद लेते रहिएगा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करना चाहेंगे एक खास रिपोर्ट से। पूर्वोत्तर क्षेत्र विविध जनजातियों का क्षेत्र है और यहाँ की जनजातियाँ अलग अलग संस्कृति, परंपरा और कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। न सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र का बल्कि पूरे भारत का, दुनिया भर में ये विरासत और संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत बड़ी संख्या में बसने वाली इन जनजातियों की अपनी खासियत है, अपना खानपान है, पहनावा है और संस्कृति में भी बहुत विविधता है। लेकिन जो विशेष बात इस क्षेत्र को बनाती है कि इन विविध जनजातियों में एक सामंजस्य है और यही सामंजस्य जो भारत में विविधता में एकता का एक खूबसूरत मंत्र है, उस मंत्र को ये पूर्वोत्तर क्षेत्र परिभाषित करता है। और 8 राज्यों में बसने वाली इन विभिन्न जनजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जनजातियां क्या परंपराएं लेकर आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से खुद में इन परंपराओं को जीवित किए हुए हैं, इस खास रिपोर्ट में हम विस्तार से सुनते हैं।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय विविधता पूरे देश में अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के कारण विशेष स्थान रखती है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और लोक कथाएं हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत उत्सवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और नदियाँ हैं जो इन जनजातियों की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। अधिकतर जनजातियाँ पहाड़ी और जंगलों से जुड़े इलाकों में रहती हैं, जहाँ उनकी परंपरागत जीवन शैली कृषि, बागवानी, पशुपालन और शिकार पर निर्भर करती है। इन जनजातियों का इतिहास सदियों पुराना है और उनके सामाजिक ताने बाने में प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिनमें आदि, नीशी, अपातानी, टैगिन, मोनपा, वांचो और मिसमी प्रमुख हैं। अपातानी समुदाय अपनी अनूठी कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बिना बैलों के खेतों में धान की खेती की जाती है। मोनपा समुदाय का संबंध तिब्बती संस्कृति से है और इनका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसी तरह वांचो और टैगिन जनजातियां अपने पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोक कथाओं के लिए जानी जाती हैं। असम की जनजातीय संरचना भी अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ बोडो, मिसिंग, देवरी, कार्बी, तिवा और सोनवाल कछारी जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। बोडो समुदाय असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है और इनकी भाषा, नृत्य और संगीत इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। मिसिंग जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ बसती है, जहाँ उनके बांस के बने मकान और परंपरागत हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध हैं। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया समुदायों की परंपराएं विशेष रूप से ध्यान खींचती हैं। खासी जनजाति मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती है, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मातृ पक्ष से चलती है। खासी समाज में महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गारो जनजाति अपने अनूठे पारंपरिक पहनावे, संगीत और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जयंतिया समुदाय खनन और कृषि से जुड़े हैं और इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी मात्र सत्तात्मक स्वरूप की हैं। मणिपुर में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं मैती, नागा और कुकी। मैती समुदाय की सांस्कृतिक परंपराएं, नृत्य और संगीत देश भर में लोकप्रिय हैं। ये समुदाय अपनी विशिष्ट मार्शल आर्ट थांगता और पारंपरिक नृत्य रास लीला के लिए प्रसिद्ध है। नागा और कुकी जनजातियां पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और हथकरघा उद्योग है। मिजोरम की जनजातीय संरचना भी अद्वितीय है। यहाँ लुशी, रालते, हमार, पाइते और पाविस जैसे समुदाय निवास करते हैं। लुशी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है, जो यहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जनजातियों की पारंपरिक पोशाकें, संगीत और नृत्य बेहद प्रसिद्ध हैं। नागालैंड में नागा समुदाय की कई उपजातियां हैं, जिनमें अंगामी, एओ, सीमा, चांग, फोम और जेलियांग प्रमुख हैं। नागा जनजातियां अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। इनका पारंपरिक आभूषण और पोशाक इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। यहाँ के हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजातियों की रंग बिरंगी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, चकमा और हलम समुदाय रहते हैं। त्रिपुरी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है, जिनकी सांस्कृतिक पहचान उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत से होती है। चकमा जनजाति बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रमुख जनजाति है, जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निवास करती है। रियांग समुदाय की जीवन शैली जंगलों और पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है। Shining. सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेपचा समुदाय प्रमुख हैं। लेपचा जनजाति को सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है, जो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है और इनका पारंपरिक पहनावा और भोजन तिब्बती शैली का होता है। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ अपनी भाषाई विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की अनेक जनजातियाँ अपनी विशिष्ट भाषाएं और बोलियाँ बोलती हैं, जिनमें से कुछ लिखित रूप में संरक्षित हैं, जबकि कई बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें। इन जनजातियों की पारंपरिक आजीविका कृषि, बांस कला, हथकरघा, उद्योग और वन संसाधनों पर निर्भर करती है। कई समुदाय झूम कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। हालांकि आधुनिक समय में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण कई युवा अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जैसी योजनाएं विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
श्रोताओं, इस विशेष रिपोर्ट के बाद अब हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की अलग अलग खास रिपोर्ट सुनते हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं मिजोरम। आजकल हम सभी जानते हैं कि किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है, और अगर मैं आप सभी से ये प्रश्न पूछूं भी कि आपने अंतिम पुस्तक कौन सी पढ़ी थी, तो शायद बहुत से हमारे श्रोता अपनी स्मृति में ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आजकल के इस दौर में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में किताबों की ओर जरूर रुख करें और इसे अपनी स्मृति से ना गायब करें। हालांकि आजकल हमारे पास YouTube, Facebook, WhatsApp और Instagram जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया संसाधन हैं। खासतौर पर हमारे युवा और विद्यार्थी वर्ग इन संसाधनों पर ही समाचार और अन्य चीजें पढ़ते हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि अपनी दिनचर्या में हम पुस्तकों को भी शामिल करें। मिजोरम में इन लेखा संगठन ने एक पहल की है। इस संगठन ने किताबें पढ़ने की ओर प्रोत्साहन दिया है युवाओं और विद्यार्थियों को। हम सभी जानते हैं कि किताबें पीढ़ियों से सूचना का एक बहुत बड़ा माध्यम रही हैं। इसीलिए बहुत सारे संगठन ऐसे हैं इस देश में जो तकनीकी के बढ़ने के बावजूद युवाओं और विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने की आदतों की ओर रुख करवा रहे हैं, और इसी उद्देश्य से इन लेखा संगठन की 2018 में स्थापना हुई थी और 2022 में इसे जनता के लिए लॉन्च किया गया था। तो आइए हमारे मिजोरम संवाददाता की खास रिपोर्ट सुनते हैं।
मिजोरम में देश की दूसरी सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। पुराने समय में लोग किताबें पढ़कर जानकारी और ज्ञान प्राप्त करते थे। आजकल तकनीक के व्यापक प्रसारण के कारण मिजोरम के युवा और विद्यार्थी भी YouTube, Facebook, WhatsApp और Instagram जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर जानकारी जुटाने से पीछे नहीं है। तकनीकी प्रगति के बावजूद कुछ लोग मिजोरम राज्य में किताबें पढ़ने को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में जब तकनीक युवा पीढ़ी के लिए एक आसान उपकरण बन गई है, जिसके कारण विद्यार्थी और युवा YouTube, Facebook, WhatsApp और Instagram जैसे सोशल मीडिया से समाचार और अन्य चीजें पढ़ते हैं, वहीं मिजोरम में इन लेखा नाम का संगठन किताबें पढ़ने को बढ़ावा दे रहा है, जो पीढ़ियों से सूचना का प्राथमिक स्रोत रही है। तकनीकी विकास के बावजूद युवाओं में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन लेखा की स्थापना 2018 में हुई और 2022 में इसे जनता के लिए लॉन्च किया गया। इनलेखा जो कि एक बुक कैफे है, इस संगठन की ओर से उठाए गए कदमों के कारण कई लोगों ने अब किताबें पढ़ने की आदत फिर से शुरू कर दी है। आकाशवाणी आइजोल से बात करते हुए अनीता वेल नुनमावी कहती हैं कि कई विद्यार्थी उनके बुक कैफे में नामांकित हुए हैं, जो किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने की दिशा में आशा की किरण है। उनका कहना है कि किताबें सूचना का प्राथमिक स्रोत हैं, जिनके माध्यम से प्राप्त ज्ञान का हमारे दिमाग पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे समय में जब कई लोग सोशल मीडिया को जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इन लेखा द्वारा उठाए गए कदम युवा पीढ़ी के लिए अपनी पसंद की किताबें पढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने में बहुत मददगार होंगे। इन लेखा किताबें पढ़ने के लक्ष्य के साथ किताबें भी प्रकाशित करता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आइजोल से जिन गांगटे की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
श्रोताओं, नागालैंड में हर साल एक विशेष त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार है क्यूसुई और ये त्योहार सिर्फ पुरुष मनाते हैं। ये त्योहार तब मनाया जाता है जब नागालैंड में त्योहारों का मौसम खत्म होता है और लोग खेती के कामों में लगना शुरू करते हैं। महिलाओं के त्योहारों के बाद अलग से ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस त्योहार का महत्व क्या है और खासतौर पर नागालैंड की संस्कृति में किस तरह से ये त्योहार एक नया रंग प्रस्तुत करता है, अपने कोहिमा संवाददाता की ओर हम रुख करते हैं और ये एक खास रिपोर्ट हम सुनते हैं।
नागालैंड में त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये त्योहार नागालैंड की संस्कृति और जमीन से लोगों के जुड़ाव को दिखाते हैं। हर एक त्योहार अलग अलग जनजातियों का होता है और सब में खुशी, परंपरा और स्पिरिचुअलिटी होती है। इन त्योहारों में खान पान, नृत्य, संगीत और रीति रिवाज का बहुत महत्व है। ये त्योहार सिर्फ आनंद के लिए नहीं होते, बल्कि ये बताते हैं कि अब नया मौसम आ गया है, खेती का समय आ गया है। इस तरह के त्योहार ये भी बताते हैं कि लोगों के रिश्ते कितने मजबूत है। नागालैंड में एक त्योहार है क्योसुई। ये त्योहार सिर्फ पुरुष मनाते हैं और तब मनाया जाता है जब औरतों का त्योहार सहयोगनी खत्म हो जाते हैं। इस त्योहार में पुरुष मोरुंग बनाते हैं, जो उनका एक खास घर होता है। इस त्योहार से पता चलता है कि अब त्योहारों का मौसम खत्म हो गया है और अब खेत में काम करने का समय आ गया है। आज हम आपको क्योसुई के बारे में बताएंगे, जो तिखिर नागा जनजाति का एक बहुत खास त्योहार है।
The Kyosunyi festival begins with a proclamation from the head of Kells or village leaders announcing that the third day or Ramnai is the ideal time for celebration to start. From that moment, all villagers, men and women alike, help or work, whether it is collecting firewood or grain, and ensure that their pantries are fully stocked. On the designated Ramnai, the men gather early in the morning to clean, prepare and adorn their morungs with the finest handicrafts. By the afternoon, they are ready for next ritual. A healthy rooster is chosen and is prepared with ceremonial rituals by the eldest members of the Kells. This rooster is then cooked and consumed entirely by the elders, after which they let out triumphant war cries to indicate the start of festivities. That evening, men of all ages come together to celebrate with dancing, singing and plenty of merriment. They sing songs of praise for their morung, comparing it to the beauty of hornbill and other majestic birds. The celebration continues on to the following day, carrying on until the ritual pongtiup or setting down the cup, signaling the close of the festival.
क्योसुई त्योहार लोगों के एक साथ रहने, अपने परंपराओं को निभाने और गांव की खुशी को मनाने का त्योहार है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि नागालैंड के लोग अपने संस्कृति, अपने जमीन और एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर दायरे के लिए मेरी आकाशवाणी समाचार कोहिमा।
नागालैंड से अब हम चलते हैं असम में। असम इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है 2025-26 का। गुवाहाटी में होने वाला एडवांटेज असम निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन चर्चा में है और 2025 के इस सम्मेलन के लिए बहुत सी तैयारियां जोरों शोरों से असम में चल रही हैं। खास तौर पर राज्य में कलाकारों और रचना क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हों, इस मामले में रिहर्सल्स और तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इन तैयारियों के लिए अधिकारी और मंत्री और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं क्योंकि देश दुनिया से इस महोत्सव में बहुत से लोग शामिल होने वाले हैं और यही महोत्सव ये भी दिखाएगा कि किस तरह से असम की संस्कृति और विविधता पूरी दुनिया में महत्व रखती है। तो आइए इस महोत्सव की तैयारियों पर एक खास रिपोर्ट हम अपने सिलचर संवाददाता से सुनते हैं।
25 और 26 फरवरी को गुवाहाटी में होने वाले एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 के लिए पूरे राज्य में तैयारियां जोरों पर हैं। चाय और पर्यटन असम की अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण और आपस में जुड़े हुए घटक हैं। एडवांटेज असम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में चाय बागानों के 8,000 से अधिक कलाकार 24 फरवरी को गुवाहाटी के सरुस जई स्टेडियम में झूमर बिनंदनी कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री के भी इसमें आने की संभावना है। विभिन्न जिलों ने पहले से ही अपने कलाकारों का चयन और ग्रैंड फिनाले के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बराक घाटी के 3 जिलों से चुने गए 346 कलाकारों के लिए मंगलवार से क्षेत्रीय झूमर नृत्य कार्यशाला शुरू हो गई है। जिला स्तर के अभ्यास पर राज्य के विभिन्न मंत्रियों द्वारा निगरानी की जा रही है। मंत्री जयंत मल्ला बरुआ और कौशिक रॉय सिलचर कार्यशाला में उपस्थित थे। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सिलचर से सरस्वती भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश कुमार।
श्रोताओं, अब हम सिक्किम चलते हैं। हम बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कार हमारे देश का एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। और सिक्किम में हाल ही में प्रसिद्ध नेपाली गायक और संगीतकार नरेन गुरुन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम आपको एक साक्षात्कार सुनवा रहे हैं जो हमारे सिक्किम संवाददाता ने हम तक पहुंचाया है, जिसमें उन्होंने श्री नरेन गुरुन से बात की है, उनकी गायकी, उनके जीवन और उनके प्रेरणादायी जीवन पर। तो आइए ये साक्षात्कार विस्तार से सुनते हैं।
नमस्कार।
नमस्कार।
सर्वप्रथम अपने प्रारंभिक जीवन और संगीत शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करें।
शिक्षा कोई भी हो, उसको मनन करने के लिए आत्मबल चाहिए और एक आत्म इच्छा भी चाहिए। इच्छा होने से सब कुछ बन जाता है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उसमें सिंसियरिटी जो होता है उसको और डेडिकेशन जो होता है उसके लिए काम करना पड़ता है। उसको आत्मे लेके काम करने से लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरा सब्जेक्ट था वो भी बाल्यकाल से ही शुरू हुआ था
जी,
तो मैंने उसको छोड़ा ही नहीं। इसके पीछे मैं अभी भी चल रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ
जी। संगीत सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इसमें रुचि कैसे जगी?
ये तो ऐसा हुआ कि रेडियो का गीत सुनते सुनते कई गुरुओं का नाम लिया जाना चाहिए
जी,
तो एक मेरा सपना था कि मैं बड़े बड़े कलाकार के साथ काम करूँ। लगा कि मुझे ये काम मुझे करना ही है, तो मैंने एक गुरु तो शांति ठटाल गुरामा को लिया
जी।
उसके बाद मैंने डांस के लिए बिरजू महाराज के नाम मैंने सुना था, उसका भी मैंने दर्शन किया। एक और गायक मैंने मन्नाडे जी को बहुत पसंद करता था, उसके साथ भी मैंने एक ही मंच में काम करने का मौका मिला, तो ये सब एक प्रेरणा मिली
जी। नेपाली लोक संगीत के विभिन्न प्रकारों के बारे में संक्षिप्त रूप में कृपया जानकारी प्रदान करें।
नेपाली लोकगीत एक ऐसा चीज है जो हमारा जीवन में पर्याप्त मिलता है
जी।
तो ये है कि हमारा खान पान, रहन सहन, जो जीने का एक तरीका होता है, जो खेती पाती होती है और शादी ब्याह, ये सब में हम हमारा गीत संगीत का चीज रहते हैं
जी,
उसको लेना बहुत जरूरी होता है
जी।
जैसे दशहरा में मालश्री गाया जाता है, दिवाली में भैलिनी गाया जाता है, उसी तरह से पूजा पाठ में बालन, संगीनी, ये गाया जाता है और खेतीपाती में तो हर एक खेतीपाती में गीत होता है। तो हम लोग इसको अपनी भाषा में बोलते हैं भाका। तो हम लोग का एक एक गली में एक एक जगह में अपना अपना भाका मिलते है, बहुत सुंदर होता है वो और गाने में भी मजा आता है।
अभी आप क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करने की योजना है?
अभी मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं
जी,
जैसे कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों की जुरी में भी हूँ, नेशनल लेवल में भी हूँ और गीत संगीत तो ऐसे चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैंने वर्कशॉप करना है, वर्कशॉप करना सिखाना है, सबको जिम्मेवारी बांटना है। तो मुझे जितना आता है मैं सिखाता हूँ और जितना नहीं आता है मैं सीख लेता हूँ
जी। आपने विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दिया है, इन कार्यक्रमों का कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो तो कृपया साझा करें।
बड़े बड़े रंगमंच में काम करने का मौका जो मिला वो बहुत सांदर्भिक बातें भी मानी जाती है। जैसे भोपाल में लास्ट ईयर उपसर्ग एक प्रोग्राम था, वो बहुत बड़ा था। संगीत नाटक अकादमी का देशकार एकदम बहुत बड़ा प्रोग्राम था और इंदिरा गांधी कला केंद्र का एक प्रोग्राम था, उसमें बड़े बड़े संगीतकारों ने काम करता है, उसमें भी मुझे एक मौका दिया गया, वो भी बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसे करते करते मैंने जोनल में, ईस्टर्न जोनल में 9 वर्ष मेंबरशिप किया, नॉर्थ ईस्ट जोनल में मैंने 12 वर्ष काम किया
जी।
तो ऐसे करते करते मुझे बहुत सारे ज्ञान हासिल करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगता है
जी। संगीत के प्रति रुचि रखने वाले युवा भाई बहनों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? प्रशिक्षण जरूरी है?
प्रशिक्षण तो एकदम जरूरी होता है, क्योंकि अपने लयकत में जितना भी काम करते हैं वो तो छोटा मोटा ही होता है ना?
जी।
तो जब हम सोचेंगे कि ये बड़ी चीज है, ये बड़ी औकात के साथ हमें लेना चाहिए, अच्छे विचारों के साथ लेने से ठीक होता है ना, तो इसलिए कोई भी संगीत हो, किसी का भी हो, वो हम ले सकते हैं और लेना भी पड़ता है। तो हम अपना वो लिमिटेड नॉलेज में ना रहे
जी।
मेरा गुरु बोलता था कि एक छोटा सा रास्ता लेके मत चलो, लंबा रास्ता लेके चलो बोलता था। सचमुच ऐसे ही लगता है और ये लंबा रास्ता लेने से ठीक लगा मुझे और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है।
अत्यंत व्यस्तता के बीच भी आपने समय निकाल कर अपना विचार तथा अनुभव हमारे श्रोताओं के बीच साझा किया, इसके लिए आपको मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और हमारे समस्त श्रोताओं की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई तथा शुभकामना प्रकट करती हूँ। नमस्कार।
मैं सभी श्रोताओं तथा गंतुक आकाशवाणी को धन्यवाद देता हूँ।
नॉर्थ ईस्ट डायरी में अभी आप सुन रहे थे सिक्किम के प्रसिद्ध लोक गायक तथा संगीतकार श्री नरेन गुरुंग के साथ लिए गए अंतर्वार्ता, अंतर्वार्ताकार उषा शर्मा।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।